बहुत ही हसास और बहुत ही अहम मौजू है। यह ऐसा मौजू है कि जो हमारी जिंदगी यानी जो हुसूल जिंदगी है, जो हम समरा पाने वाले हैं, वो समरे का मौजू है, यानी हमको आखिर में जो फल मिलना है वो इमाम जमाना के जहूर की शक्ल में मिलना है। तो ये मौजू वो मौजू है, इसलिए हम बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं अपने मेहमान नवेद हैदर तकवी साहब की खिदमत में। तकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, और सबसे पहले हम आपकी खिदमत में अपने सभी साथियों की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी तमाम नाज़रीन की खिदमत में इस मुबारक मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मुताल हम सबको हकीकी मानों में इमाम ज़माना जल्ला ताला फरजहु शरीफ का पैरोकार बनाए और हमें आन हज़रत के फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
इलाही आमीन। मेरा दिल तो चाह रहा है ये कि तकवी साहब के आपने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, मैं इस लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता
जी
हूँ,
जी
वो लफ्ज़ है हकीकी मानो।
बेशक
तो लेकिन इस बात की तरफ हम ज़रूर आएंगे, इसलिए कि एक तो ज़बानी तौर पे आजकल हम जो है वो इमाम ज़माना को याद कर रहे हैं, इमाम ज़माना के ज़हूर की जो है दुआ भी करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर वाकई हम उनके ज़हूर की दुआ कर रहे हैं तो हम अपने अंदर इसको वो सलाहियत पैदा करें कि उनके साथ में या उनके जानसारों में या उनके लश्कर में, उनके ग़ुलामों में हम शामिल हो सकें। सबसे पहले हमारे नौजवान जो नाजरीन हैं, नौजवान जो बच्चे हैं खासकर, उनके लिए एक कुल्ली तौर पर इमाम ज़माना की ज़िंदगी पर, उनकी विलादत और उसके ऊपर रोशनी डालें हम।
जी हाँ बिल्कुल। और ये अय्याम दर हकीकत एक यादावरी हैं उन तारीख़ी हसास अय्याम के जो तकरीबन सदियों कबल रूनुमा हुए
जी
और आज उसका तसलसल जो है वो अजीम शान जश्न की सूरत में पूरी दुनिया में जो है पेश किया जा रहा है। हज़रत इमाम महदी अजल्लाह ताला फरजहु शरीफ की विलादत बासआदत मैं अपने तमाम सुनने वाले और देखने वालों की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये भी अजायब कायनात का एक जो है वो अजीम मोजज़ा है। और जहाँ पर हम जिक्र करते हैं खुदावंद मुताल के मसलन मोजज़ात का, करामात का और उन मसलन चीज़ों का कि जो खलकत और तमाम तर एक जो मराहिल हैं उससे हटकर अंजाम पाए तो हज़रत इमाम महदी अजल्लाह ताला फरजहु शरीफ की विलादत बासआदत 255 हिजरी कमरी में जो हुई वो भी इसी तरीके से थी। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हत्ता के विलादत से चंद लम्हे पहले तक ये मालूम नहीं था कि आसार वज़े हमल जो थे हज़रत नरजिस खातून के बदन पर कहीं जो है वो नज़र नहीं आ रहे थे। और ये इक्तिज़ा था इस चीज़ का कि दुश्मन ने अपनी तमाम तर कोशिशों को बरूए कार लाते हुए कि किसी भी तरीके से इस विलादत को वक़ूअ पज़ीर नहीं होने देना है, उन्होंने अपनी एक प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन अल्लाह को अपनी हुज्जत को बाकी रखने के लिए इन तमाम मौज़ात को जो है वो ज़हूर में लाना था। और मुख्तसरन मैं अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हज़रत हकीमा खातून के जो कि हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की फूफी थी वो इफ्तार के लिए घर में जब तशरीफ़ लाईं तो आपने उस वक्त हज़रत हकीमा खातून से ये कहा कि आज आप मेरे घर तशरीफ़ रखें रात को
जी
और जो है मुझे एक ज़रूरी अम्र के लिए आपकी ज़रूरत है। तो हज़रत बीबी हकीमा खातून ने पूछा कि बेटा बताओ क्या बात है, तो कहा कि मेरे घर जो है खुदावंद मुताल जो है वो एक फ़र्जंद की विलादत होने वाली है।
वाह
तो इस मकाम पर जो थी वो हज़रत हकीमा खातून जो थी वो थोड़ी सी उन्होंने ताज्जुब से कहा कि बेटा आप ये जो बात कर रहे हैं आपको मालूम है कि आप क्या बात कर रहे हैं, तो कहा कि इस मुझे भी मालूम है जो मैं बात कर रहा हूँ और मुझे मेरे खुदा को भी ये मालूम है कि जो मौजज़ा इस शब को खल्क करने वाला है।
बेशक
तो वो सुनकर हैरान रह गई, हत्ता कि वो कहती हैं कि मैं चंद लम्हे कबल जो है वो नरजिस के पास से उठ के आ रही हूँ और कोई वज़ हमल के जो है वो आसार मौजूद नहीं हैं। बस ये कहकर जो है वो अपनी ख्वाबगाह की तरफ गई कुछ नोश फरमा कर, और कमरा तारीक था और का तारीक कमरे के अंदर जो है वो फरमाती हैं कि एक नूर की मुझे झलक जो है वो महसूस हुई, और जब नूर की उस झलक से जो कमरा नूरानी हुआ तो मैंने देखा कि नरजिस खातून के हाथों में एक ऐसा बच्चा था पाक व साफ के जिससे जाहिर हो रहा था कि ये अतिया खुदाबंद है कि जो हज़रत नरजिस खातून को खुदाबंद मुताल ने हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के तवसुस से अता फरमाया है। तो ये विलादत हज़रत इमाम महदी अजल्ला ताला फ़रजहु शरीफ की ख़ुद एक ऐसा अजीम मौजज़ा है कि जो खुदावंद मुताल ने अपनी हुज्जत को दुनिया में बाकी रखने के लिए जो है वो मसलन इस तरीके से आपकी विलादत जो है
पूरा
वो
इंतज़ाम किया,
इंतज़ाम किया। और हकीमा खातून ख़ुद कहती हैं कि मुझे हैरत हुई, और जब कमरे से बाहर मौजूद हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को ये ख़बर मिली तो आपने इरशाद फरमाया कि फूफी अम्मा मुझे बच्चा मेरे हवाले कर दीजिए। जब बच्चे को हज़रत हकीमा खातून जो हैं वो लेकर आई इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में, तो सफ़ेद पारचे में सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ ये नूर नज़र जब बाप की आगोश में आया तो बाप की आगोश में आते ही फ़र्जंद ने बाप को सलाम किया। हज़रत हकीमा खातून कहती हैं कि मैंने ये आवाज़ अपने कानों से सुनी और हैरान रह गई कि चंद लम्हे विलादत के और ये बच्चा अपने बाप से जो है वो तकल्लुम कर रहा है, गोयाई कर रहा है। उसके बाद हज़रत इमाम महदी अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने कलमे की तिलावत फरमाई, आयम अतहार के हक़ पर जो है वो ताकीद फरमाई, और पैगंबर ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर और अपने पिदर बुज़ुर्गवार तक की इमामत का इकरार किया, और उस ज़िम्मेदारी के जो कि अल्लाह ने अपनी हुज्जत के कंधे पर रखी उसका भी इजहार किया। ये वो सहना और ये वो मसलन मंज़र है कि जो कि जो है पेश आया और जिसने वहाँ पर मौजूद सबको जो है वो हैरान कर दिया।
बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई बहुत ही अजीम, यानी एक वाकया जो आज के दौर में बहरहाल इमाम हमारे ज़माने के इमाम जिनके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं उनकी विलादत के ऊपर जो आपने रोशनी डाली, वाकई बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बहरहाल बहुत सारे मोजज़ात होते हैं, जैसा कि हमारे मेहमान जनाब नवेद हैदर तकवी साहब ने भी कहा कि इमाम महदी अजल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ का तकल्लुम ठीक पैदाइश के बाद हम लोगों को ताज्जुब नहीं होना चाहिए, जब खुदा की मर्ज़ी होती है तो गहवारे में भी अगर कोई बच्चा होता है तो वो बोलने ज़रूर लगता है। इसके बहुत सारे आसार हम लोगों ने देखे होंगे, कुरान करीम में भी इसके चंद नमूने खुदा ने ज़िक्र किए हैं, और यकीनन ये भी एक मोजज़ा इलाही है जो इंशाल्लाह जब जहूर होगा तो उसके बहुत सारे नमूने देखने में आएंगे। चलते हैं हम वापस अलमदार जैदी की तरफ और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जी
शुक्रिया हसन। वैसे मैं भी आपको बताऊं कि कल मैं भी आप लोगों की दुआओं से कुंभ में था, और मुझे भी जो है वहाँ की ज्यारत और वहाँ के लोगों का जो हुजूम था, और ख़ासकर जगह जगह कदम ब कदम जो है वो लोग मौके बनाए हुए थे, लोगों की पज़ीराई कर रहे थे, लोग जो है जोक दर जोक जो है वो जमकरान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, और इतना बड़ा मजमा था कि लग रहा था कि एक शाहकार है, यानी वाकई आँखों से अश्क भी जारी हो रहे थे उनको देख देख कर, और दिल में एक जोश जो है वलवला पैदा हो रहा था कि ऐ इमाम आप ज़हूर कर जाएं, आपके जो है वो ग़ुलाम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। बहरहाल हमारी बातचीत इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन हम इससे पहले के हम अपनी बातें कहें, हम चलते हैं इस्लामी स्कॉलर नवेद हैदर तकवी साहब की खिदमत में। तकवी साहब, अभी हमारी जो बातचीत जो गुफ्तगू हुई, आपने पूरा उस वाक़े को बयां किया जो विलादत के मुतालिक था, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ आपसे कि जब इमाम की विलादत हो गई और जो तमाम वाक़ियात हैं, लेकिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जबकि विलादत के ऊपर जब इतना पहरा था और इतनी सब बंदिशें थीं, उसके बाद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने ऐसे क्या इकदाम किए कि वो ये बता सकें कि ये मेरा बेटा जो है वो जो है वो आप आने वाले मतलब हमारा नायब है यानी इमाम है, वक्त होने वाला है, कैसे
जी
तारुफ कराया?
जी बिल्कुल, इमाम के बाद इमाम का तारुफ और इमाम को मुतारिफ कराना, वो भी इमाम में वक्त की जो
बिल्कुल
है वो ज़िम्मेदारी है। हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद मेहदी अजल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की विलादत के बाद आपको किस तरह मुतारिफ करवाया, इसमें आपने मुख्तलिफ रविशों का जो है वो इंतखाब किया, और एक रविश जो थी आपकी ये थी कि आपने मोतमदीन और उलमा जो थे उस ज़माने
जी
के उनको अपने घर मधु किया, और मधु करने के बाद जो है आपने अपनी आखिरी हुज्जत को जो है उनके सामने ज़ाहिर किया और बताया कि मेरे बाद मेरा फर्जंद मेहदी जो है वो इमाम वक्त होगा, और आप सब पर वाजिब है कि आप इनकी
इताअत करें।
इताअत करें और इनकी नुसरत करें, और इनके मसलन सिलसिले को, इमामत के सिलसिले को जो है वो आगे बढ़ाएं। इसके अलावा एक और रविश इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने, चूँकि अब्बासी खलीफा जो थे वो ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से मेहदी के रास्ते के अंदर जो है वो रुकावटें खड़ी करें, यानी कि ये सिलसिला जो है
मुनक़ता
इस
कर दें।
मुनक़ता कर दें, इसी मकाम पर जो है वो रुक जाए।
मैं यही इसीलिए मैंने पूछा आपसे
जी,
कि इतनी तमाम तर सख्तियों के बावजूद, इतनी बंदिशों पैरों के बावजूद, ये भी एक चैलेंज था।
चैलेंज था। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हज़रत इमाम मेहदी अजल्लाह ताला फरजहु शरीफ के लिए कोई ज़माना जो था विलादत के बाद से लेकर और अब तक ऐसा नहीं था कि जिसमें आप आज़ादी के साथ जो हैं वो मजमाए आम में हाजिर हुए हों और आपने आकर जो है वो काम को अपने इमामत के जो है वो अंजाम दिया हो। ये एक बहुत ही हमारे लिए और मानने वालों के लिए एक बहुत ही जो है वो एक ऐसा मरहला है कि जहाँ पर आकर इंसान थोड़ी देर के लिए उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो पैदाइश से बाद से लेकर
आज तक
कुछ आज तक, यानी कि एक गैबते सोगरा है और एक गैबते कुबरा है, और मखसूस लोग जो थे फ़कत आपसे जो है वो मुलाकात करते थे। तो एक रविश ये थी, एक रविश आपने ये की कि आपने एक बड़े पैमाने पर हज़रत इमाम मेहदी अजल्लाह ताला फरजहु शरीफ का जो है वो अकीका किया, और कुछ जो है वो गोसफन जो है वो आपने ज़िबह किए, और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपने कुछ मखसूस अफराद के साथ उस गोश्त को जो है मुख्तलिफ करियों और देहातों में जो है वो रवाना किया, और जाकर जो है ये कहा कि जा जिसको भी जाकर देना, और नाम आपने पहले से बताए कि ये मेरे फर्जंद मेहदी की विलादत के अकीके का जो है वो गोश्त है, और इमाम की तुम्हारे लिए ताकीद ये है कि इसकी नुसरत से कभी भी हाथ जो है वो ना खींचना, और हमेशा
बेशक
जो है इसके शाना बशाना जो है ना वो रहना।
बेशक
एक और चीज़ के जो के लोग पूछते थे कि आपके बाद इमाम कौन होगा, तो इमाम इशारा करके कहते थे कि ये मेरा फर्जंद जो है मेरे बाद जो है सिलसिले इमामत का जो है वो निगहबान है। ख़ुद एक हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत औज जवानी में हुई है,
बिल्कुल
और इमाम मेहदी अजल्लाह ताला फरजहु शरीफ का जो सिने मुबारक था वो भी नहायत कम था, तो इसलिए लोगों की तवज्जो जो है एकदम किसी सूरत जो है वो ये नहीं जा रही थी कि 6 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा जो है वो मनसब इमामत पर किस तरीके से फायज़ हो
फैज हो
सके।
जाता।
इमाम ने एक ख़त जो है जनाब अहमद इब्ने इसहाक़ अशरी को लिखा और कहा कि ए अहमद, तुम कुम मेरे मानने वालों के पास जाओ, और जब तुम वापस आओगे तो मेरे घर के अंदर जो है वो गमो अंदोह का आलम देखोगे, और जो फ़र्द तुमसे तुम्हारे इस मसलन
खत के हो
ख़त के बारे में सवाल करे और उस थैले के बारे में सवाल करे कि जिसमें कुम के मोमिनीन ने वजूहात जो है मेरे लिए भेजी हैं, तुम समझ लेना कि वही मेरा जो है वो जानशीन है।
जानशीन
अहमद इब्ने इसहाक़ अशरी कहते हैं कि मैं कुम गया और कुम में इमाम का ख़त मैंने मोतमदीन को और कुम के उलमा को जो है पहुँचाया, और उन्होंने कुछ वजूहात जो है मुझे दी वो मैंने एक थैले में डाली, और कुछ खतूत और मसाइल थे वो मालूम किए, तो कहते हैं कि जब मैं पलट कर आया तो मैंने देखा कि इमाम के घर से जो है वो नौहो नाला की जो है वो सदा बुलंद हो रही है। इसी असना के अंदर जो है वो एक बच्चा जो है वो घर से बाहर निकला और उसने मुझसे कहा, अशरी वो थैला लेकर आओ कि जिसमें हमारे मानने वालों ने जो है ना तुम्हें सवालात और वजूहात जो है वो भेजी हैं। तो कहते हैं कि जब ये बच्चा मेरे सामने आया तो मैंने भड़कर दस्त मुबारक को चूमा और अपने सीने से लगाया और ये कहा कि इमाम ने जो मुझसे कहा था वो हू बहू जो है उसी तरीके से अमल में आया जिस तरीके से मेरे इमाम ने जो है वो फरमाया था।
बहुत बहुत शुक्रिया।
कहने का मकसद मेरा ये है कि इमाम मासूम ने इस हुज्जत कायम को ता कयामत बाकी रखने के लिए उन फराइज को जो अल्लाह ताला ने आप पर मामूल किए थे वो अपने चाहने वालों को जो है वो बताए और सख्त तरीन घुटन के माहौल के अंदर जो है शम इमामत को जो है वो आशकार रोशन किया और वो शम इमामत जो है आज भी जो है वो हम पर साया फिगन है।
बिल्कुल बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया।
सवाल तो यानी कई आए हैं लेकिन तकरीबन सबका मजमून ये है कि हम किस तरह से एक आम इंसान जो है आजकल के दौर में रहने वाला वो क्या करे कि इमाम का ज़ुहूर हो जाए।
जी जी तो मैं आपके सवाल के साथ में ही अपने मेहमान की खिदमत में चलता हूँ। तकवी साहब, आपने ये सवाल सुना, एक हमारे पास कुल जो है 5 से 6 मिनट का वक्त है, आप 5 मिनट मान के
जी
चलिए।
जी जी
मैं ये चाहता हूँ जल्दी से, एक तो ये सवाल है,
जी जी
दूसरे मेरा एक सवाल है साथ में। इस वक्त जो है, मैं इस वक्त की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बीच में बहुत सारे सवालात हैं लेकिन उनको सबको किनारे हटाते हुए आ गया हूँ। हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं और ये कि ज़हूर को लेकर इमाम के, मैं ये देख रहा हूँ कि माशरे में कुछ गलत फहमियाँ भी फैलाई जा रही हैं। अगर 5-6 मिनट में इसको जल्दी से आप बता सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी।
देखें, ये कोई ऐसा मौजू नहीं है कि जिसको बहुत छोटे से वक्त में जो है ना एक एक लफ्ज़ जो है उस पर जो है गुफ्तगू के लिए जगह मौजूद है। लेकिन जहाँ तक हसन ने जो पहले सवाल किया, मैं उसका ये जवाब बता दूँ और ये जवाब मेरा नहीं है, ये जवाब ख़ुद आइम्मा अथहार अलैहिस्सलाम ने जो है वो हम तक पहुँचाया। इमाम फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से एक हदीस जो है मनकूल फरमाते हैं कि गैबत में के ज़माने के अंदर जो मुंतज़रान हैं वो अगर वो चाहते हैं कि ज़हूर इमाम जो है वो हो जाए तो अपनी ज़िम्मेदारियों पर, तो कहा कि वही ज़िम्मेदारी यानी कि वाजिब और हराम काम जो हैं, वाजिब चीज़ों से इंसान जो है अंजामदही वाजिब चीज़ों की और हराम काम से जो इज्तनाब जो है
जी जी।
इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर पेशा बनाएं, यानी कि इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज करें। एक और जगह हमें ज़हूर के हवाले से मिलता है कि तुम चाहते हो कि इमाम ज़हूर करें तो तुम अपनी नमाजों के अंदर जो है सुस्ती न बरतो, अपने रोज़ों के अंदर जो है वो किसी किस्म का जो है वो कमी जो है वो ना लाने दो। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि इमाम उस वक्त ज़हूर करेंगे कि जब माशरे के अंदर जो है सालहीन की तादाद जो है वो बढ़ेगी, बातकवा अफराद की तादाद जो है वो बढ़ेगी और इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो है वो इनफरादी अमल इंसान का जो है, इज्तिमाई अमल जो इंसान का है वो नहायत अहमियत का हामिल है। अगर हमने मसलन इनफरादी और इज्तिमाई उमूर के अंदर जो है वो लिहाज नहीं बरता तो यकीनन ये समझिए कि हम ज़हूर से बहुत पीछे
बहुत
हैं,
दूर हैं,
बहुत दूर हैं हकीकी मानों में। और अगर हमने एक हदीस ख़ुद इमाम ज़माना जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की हमें मिलती है, आप फरमाते हैं कि मेरी गैबत के ज़माने के अंदर अपने माल में से गरीबों पर खर्च करो, ये मेरे ज़हूर के लिए जो है तुम्हारी एक कुमक को मदद होगी। यानी इमाम क्या बताना चाहते हैं? इमाम ये बताना चाहते हैं कि मुस्तज़फ़ तबके को हमेशा जो है वो नज़र में रखो ताकि अगर तुमने अगर मुस्तज़फ़ तबके को फरामोश कर दिया तो गोया तुम मेरे ज़हूर से दूर तर जो है ना वो चलते चले जाओगे। लिहाजा अमल की तरफ इंसान आए, नेक कामों की तरफ इंसान आए, इज्तिमाईयत के अंदर जो है वो इंसान आए और अपने फ़र्ज को जो है वो अदा करे। छोटी सी मिसाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, टाइम बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है, इसका भी मुझे इल्म है, यही सैलाब जो ईरान के अंदर आया था, पूरा का पूरा ईरान जो है वो एक ज़बान होकर सैलाब जदगान की मदद के लिए कूद पड़ा। लोगों ने अपनी बच्चियों ने अपने गोशवारे दिए, ख्वातीन ने अपनी चूड़ियाँ सोने की उतार के जो है ना वो दे दी, जो घर में मौजूद चीज़ थी उन्होंने इरफाक किया। उन ये क्या, यही चीज़ ज़हूर के लिए एक ज़मीना फराहम करती है। ये जज्बा जो है, ये अगर जो है इंसानों के अंदर आ जाए कि हमें ज़रूरतमंदों की मदद के लिए अपने आप को पेश करना है, तो अपने आप को पेश करके उस अजीम मंज़र को कि जो कि एक मुंतज़रान का होता है, वो इंसान जो है वो आगे लेके आता है। आखिर के अंदर मैं आपके उस सवाल की तरफ आता हूँ, वो उसका जवाब ये कि बहुत से लोग इन्हराफ पैदा करते हैं कि ये हमें क्या करना है, जो कुछ करना है इमाम को करना है, जब वो आएंगे तो वो खुद ब खुद तमाम चीज़ें जो है वो दुरुस्त कर देंगे,
जी
लिहाजा हमें हरकत और हमें जो है किसी किस्म की जद्दोजहद की ज़रूरत नहीं है, खुद जिस जो पर्दे गैब में मौजूद है वही इन तमाम उमूर को खुद ब खुद जो है वो
अंजाम
अंजाम दे देगा। इससे क्या होता है, इससे हौसले जो है वो सुस्त हो जा,
सुस्त हो जाते हैं।
इंसान जो है वो अपने अंदर जो है वो एक तरीके से जो उन जिम्मेदारियों पर जो अमल करने के लिए अंजाम
जो
देने
जज्बा होना चाहिए,
जज्बा होना चाहिए, उस जज्बे के अंदर जो है वो
सुस्ती हो
सुस्ती
जाती है।
वाकई हो जाती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि ज़हूर के लिए जद्दोजहद की ज़रूरत है, ज़हूर के लिए इंसान को मैदान में आने की ज़रूरत है। आयतुल्ला जवादी आमली कहते हैं कि बहुत से लोगों को ज़हूर से डर लगता है, वो गैबत इमाम को तरजीह देते हैं इस बात पर कि जहूर में आ जाए, जहूर इमाम का हो जाए, तो उससे उनको डर लगता है। वजह क्या है, वजह यह है कि जब इमाम जहूर करेंगे तो यकीनन मैदान में आना पड़ेगा, और इसकी वाज़े मिसाल वो है कि जब इमाम
बेशक
वक्त ने करबला के मैदान के अंदर लोगों को आवाज़ दी और जो लोग आए वो कामयाब रहे, और जो लोग नहीं आए तो उनके लिए हमेशा जो है पशेमानी और ज़िल्लत व
बहरहाल
ख्वारी जो है उनके दामनगीर हुई और
बिल्कुल
उनके लिए
बिल्कुल
कलंक का टीका जो है
बिल्कुल
बन
वाकई
गई। लिहाजा अमल और वही पैगाम पैगाम जो है
जी जी
इमाम गैबत के ज़माने का यही है कि इंसान जो है कुरान से वाबस्तगी को बढ़ाए और अपने आप को जो है वो उलमा और ख़ास तौर पर मराज तकलीद, ख़ास तौर पर वली फ़कीह, इसका पैरो बनाए ताकि
बिल्कुल
हम एक तरीके से
इलाहिया
अपने
में बहुत
आप
बहुत
को ज़हूर इमाम
जी
ज़माना जल्लाहु ताला
तआला मालूम
फ़रजहु शरीफ से नज़दीक
करीब
कर
जी। बहुत
सकें।
बहुत
मैं
शुक्रिया,
आपसे भी और तमाम नाज़रीन से भी माजरत चाहता हूँ कि शायद कुछ
बहुत बहुत
तशनगी जो है
शुक्रिया। नहीं नहीं
वो रह गई हो, लेकिन
बिल्कुल
वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं थी
बिल्कुल
कि मैं इससे ज़्यादा कुछ आपके
बिल्कुल बहुत बहुत
खिदमत में
शुक्रिया,
अर्ज़
आप
करूँ।
तशरीफ़ लाए, जहमत की आपने। इंशाल्लाह फिर आपकी किसी और मौके पर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
शुक्रिया।